ओम शांति। जैसे बाबा की अभी लहर चल रही है, सफल करो, क्योंकि जब हम सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, और सफल करने के लिए जाएंगे लेकिन साथ में माया का भी लहर क्या चल रही है, व्यर्थ चलाने की। तो इसीलिए आप बाबा का मंत्र है सफल करो, और माया ही उतना ही क्या करेगी, दूसरी तरफ से विरुद्ध करेगी, अर्थात एक व्यर्थ का प्लान बनाएगी कि इनको व्यर्थ कैसे करना है। जैसे आज की भी वाणी सुनी सबने, तो ऐसे हमें रोज क्या करना है, सफलता का प्लान बनाना है। और उस वाणी को जैसे अभी जो बाबा की मुरली चली, उसको अच्छी तरह हमें क्या करना है, क्योंकि नया वर्ष के निमित्त या नए वर्ष के स्टार्टिंग में जो वाणी चली है, तो हमें सफल करने के लिए और इस मुरली को अच्छी तरह याद रखने के लिए उस मुरली के आधार से हमें क्या करना है, सोमान से उस मुरली को अच्छी तरह याद रखना है। तो सोमान हम कैसे, उसको पूरा टोटल मुरली से सोमान कैसे लेना है, मैं आत्मा सफलता प्राप्त करके, सफल कर सफलता प्राप्त करने वाली संगम युग की घड़ियों में मौज मनाने वाली सहज योगी सो सफलता मूर्त आत्मा। तो सारा दिन इसी सोमान में हमें क्या करना है, सफल करना है और सहज योगी बनना है, और उसका अभ्यास करने के लिए सारा दिन जैसे बाबा ने कहा ना, सहज योग का आधार क्या है, मेरा बाबा। अगर मेरा बाबा जितना हम दिल से कहेंगे उतना आप सहज योग लगा सकेंगे। कोई भी जैसे बाबा ने कहा ना, सारा दिन आप कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, मैं और मेरा जहां आता है वहां क्या करो, मैं कौन और मेरा कौन, बस ये दो शब्द याद रखो, तो आपका सहज योग रहेगा। जैसे बाबा ने कहा ना, बिंदी बिंदु 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 करते नहीं बैठो, लेकिन कुछ सोमानों के अभ्यास करो। जब सोमानों के अभ्यास करेंगे तो योग आपके लिए क्या होगा, सहज और सरल हो जाएगा। और जैसे पिछले भी बाबा की जो वाणी चली थी खास सोमानों के ऊपर, जैसे बाबा ने कहा कि सोमानों में रहो, क्योंकि जितना हम सोमानों में रहते हैं उतना सोमानों के नशे में रहने से योग हमारे लिए सहज रहेगा। अगर जो सोमान में नहीं रहेगा उसको कोई अपमान करता है, निंदा करता है, उन बातों की फीलिंग में आएगा, वो योग की अनुभूति नहीं करेगा, उसको योग कठिन लगेगा। जैसे बोला ना, सहज योगी बनो, जिसको योग मुश्किल लगता है, योग में युद्ध लगता है, ऐसी आत्मा युद्ध करते करते कहां पहुंचेगी। जिसको सारा दिन योग ही नहीं लगता, योग के अंदर उसको युद्ध लगता है, उसके साथ कर्म क्षेत्र पर जो सारा दिन बातें आते हैं, कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, ग्लानी करेगा, कुछ बोलेगा, वो भी कर्म क्षेत्र में भी उसको युद्ध लगता है, ऐसे युद्ध करने वाली आत्मा कहां पहुंचेगी, त्रेता युग में। इसीलिए बाबा ने कहा कि सहज योग, कोई भी प्रकार का संस्कार विकार इसके ऊपर डांस करने वाले बनो। कृष्ण ने क्या किया, डांस किया, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए विकारों के ऊपर डांस किया, अर्थात उसके ऊपर विजय पाया। जैसे ना दिखाते ना, शय शया पर लेटा हुआ है, तो इसी तरह हमें इस विकार की दुनिया में रहते हुए भी कोई भी विकार हमें तंग न करे, वो है ब्रह्मा बाप समान स्थिति। अगर यहां कोई विकार से युद्ध चल रहा है, संस्कारों से युद्ध चल रहा है, योग में मुश्किल आ रहे, तो ऐसी आत्मा त्रेतायुगी बनेगी। इसलिए जो सत्युगी घराने की आत्मा है उसके लिए योग भी सहज और कर्म भी विजय सहज वो अनुभव करेगी। तो ऐसे हमें सहज योगी बनने के लिए क्या करना है, जैसे बाबा ने मंत्र दिया कि बस सिर्फ मेरा बाबा, मैं आत्मा, मैं कौन, ہمارے سومان اور ساتھ میں میرا کون بابا. بس یہ اگر ہم یاد رکھتے ہیں, کیونکہ بابا کا اس ورس کا وشیش جو لکشیا ہے, جیسے کہ لکشیا اور لکشن, ہمیں برہما باپ سمان بنانے کے لیے بابا جا رہے. لیکن برہما باپ سمان بننے کے لیے جیسے بابا نے کہا نا, نیراکاری نیرویکاری اور نیرہنکاری. کیونکہ جہاں اہنکار آتا ہے, اہنکار آتا ہے, وہ آتما برہما باپ سمان نہیں بنے گی. کیونکہ اہنکار کیا ہے, جس کو اہنکار آتا ہے ایسی آتمائیں, جیسا سوکھا پیڑ ہوتا ہے نا, سوکھا پیڑ ایک دم جیسا ٹائٹ ہوتا ہے, وہ نہ جھکتا ہے اور توڑو تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو اہنکاری آتما ہے وہ کیسی ہوگی, سوکھے پیڑ کی طرح, وہ کسی کو چھایا بھی, جس کو اہنکار ہوتا ہے ایسی آتما سے دوسری آتمائیں دور چلی جائے گی, نزدیک بھی نہیں آئیں گی. اتنا ہی نہیں لیکن پربھو بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گا. جس کو ابھیمان آتا ہے کوئی کلا کا وشیشتا کا گن کا, ایسے سے پربھو بھی کیا ہوتا ہے, دور جاتا ہے. کیونکہ کاریہ کرنے والا کون ہے, کاریہ اس آتما کے دوارا پربھو کرتا ہے. لیکن اس آتما کو لگتا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں, تو پربھو کو لگتا ہے میں ان کے دوارا کروا رہا ہوں, لیکن یہ اپنا ہی یہ کر رہا ہے, تو وہ پربھو کیا کرے گا وہ. کیونکہ جو اہنکار آتا ہے ایسی آتما سے, جس چیز کا اہنکار ہوگا اس کو, وہ چیز اس کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی. ارتھات جو بابا پربھو ہمیں اس کلا کا وردان دیتا ہے, وہ وردان پھر واپس لے لے گا, ارتھات وہ کلا بھی اسے نشٹ ہو جائے گی. پھر وہ کیا ہو جائے گا, سنسار میں اکیلا رہ جائے گا. اسی لیے کوئی بھی چیز کا ابھیمان اہنکار نہ. اس لیے بابا نے بار بار بچے نیر اہنکاری بنو, نیرویکاری بنو. کیونکہ جو نیر اہنکاری ہوں گے وہی نیرویکاری رہ سکیں گے. کئی بولتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہم نیراکاری استھتی ہماری بنتی نہیں. جب ہم نیراکاری استھتی میں استھت رہتے تو نیراکاری مطلب آتما ابھیمانی استھتی بنتی نہیں. کیوں نہیں بنتی, اگر جس کو کوئی گن کا کلا کا وشیشتا کا ابھیمان ہوگا یا دیہ کا بھی اہنکار ہوگا, ایسی آتما نیراکاری استھتی میں نہیں ٹک سکے. اسی لیے نیر اہنکاری جتنا بنیں گے اتنا ہی نیراکاری استھتی کا ابھیاس رہے گا. یہ ایک پرکار کا کیا ہے, سائیکل ہے. جو نیراکاری وہی نیرویکاری بن سکیں گے. وکاروں کو جیتنے کا آدھار ہے نیراکاری استھتی, اور جتنا نیراکاری اتنا نیرویکاری اتنا ہی نیر اہنکاری. تو اسی لیے ہمیں کوئی بھی پرکار کا اس اہنکار کے وش کو جو اندر بھرا ہوا ہے, اس اہنکار کے وش کو کیا کرنا ہے, نکالنا ہے. اگر اہنکار کا وش ہوگا, کیونکہ ہمارے اندر کوئی سنسکار ہے وکار ہے, اس کو جیتانے والا کون ہے. آج کوئی پاور ہے ہمارے وکار کے اوپر جیت پانے کی, ایسی دنیا میں کلیو کی تمو پردان دنیا میں, جس کو سادھو سنت بھی انہوں نے بھی کیا کیا, اتنا سالوں سے تپسیا کر کے چھوڑ دیا کہ یہ اسمبھو ہے. لیکن یہاں ہم گرست میں رہ کر کے یہ سمبھو کاریہ کر رہے, پتی پتنی ایک ساتھ میں رہ کر کے. لیکن ایک کرانے والا کون ہے, آج کوئی بھی وکار کے اوپر جیت پانے والا کون ہے. نمت بابا ہمیں پہلے یوکتی بتاتا ہے, جیسے وہ مہابھارت میں دکھاتے ہیں, جیسے رامائن میں مہابھارت میں, جیسے جو نارد تھا, نارد کو ایک بار کیا ہوتا ہے, اہنکار آ جاتا ہے. وہ ایک بار ایسے کوئی جا رہا تھا, تو جاتے جاتے اس کو وہاں بہت مطلب راون نے بہت وہاں اتیاچار مچایا تھا, اسی لیے وہاں کے جو سادھو سنت سب اکٹھے ہوئے تھے, ابھی کیا کرے, راون کو ختم کرنا پڑے گا, یہ سب بہت اتیاچار مچا رہا ہے. اسی سمے سے وہاں سے نارد جا رہا تھا, تو نارد کو بلا کر لیا, بولا کہ بھائی یہ تو راون بہت یہاں اتیاچار مچا رہا ہے, ابھی اس کو تو ہمیں ختم کرنا ہوگا. تو سب نے کہا, سادھو سنتوں نے تو کہا, ہمارے بس کی بات نہیں ہے تپسیا کر کے اس کو ختم کرنا, ہمارا سب بل ہے شکتی ہے, ہم سب آپ کو دے دیتے, آپ کیا کرو تپسیا کرو اور راون کو ختم کرو. تو اس نے تپسیا کرنا پرارمبھ کر دیا. تو تپسیا کرتے کرتے تو وہ تو نارائن کا بھگت تھا, تو اندر دیوتا کو لگتا ہے, اندر دیو کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میرا سنہاسن لینے کے چکر میں تپسیا کر رہا ہوں گا, اس کو ڈاؤٹ آتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے سامنے مایا بھیجنا شروع کرتا ہے. भिन्न भिन्न प्रकार की माया भेजता है। जब माया भेजता है तो वो तो सोचता है कि चलो नारायण क्या करता है, उसको पहले से बताता है कि ये देखो आपके सामने ये माया आने वाले है, आप उसके पर जीत पाओ। तो वो क्या करता है, पहले से बताने के कारण ये आने वाला है इसके कारण वो सावधान रहता है। तो ऐसे करते करते सब बातों को जीत पाता है। तो लास्ट में उसने काम विकार को जीत भेज दिया। जब नारायण ने उन्होंने पहले ही बताया कि ये काम विकार आपके पास आने वाला है, आप उसके पर जीत पाना, तो उसने उसके पर भी जीत पाया। जब उसको जीत पाया तो फिर उसको ये आता है कि उसका अहंकार आता है। मतलब गुप्त रीति से नारायण ने बताया था, प्रत्यक्ष रूप में आकर के नहीं, उन्होंने बल भेजा था उसके साथ जीत पाने के लिए। तो उसको अहंकार आता है, वाह मैंने तो काम विकार पर जीत पा लिया, ये तो मैं तो बहुत बड़ा हो गया, शंकर जी जैसे हो गया। तो सीधा शंकर जी के पास जाता है, बोलता है कि आपको पता है मैंने तो काम विकार पर जीत पाया। तो वो बोलता है कि ये तो बोलता है, और उस शंकर जी को बोलता है आप तो गृहस्थी बन करके बैठे है, लेकिन मैं आपसे भी बड़ा हो गया, मैं आपके लायक हो गया। तो बोला अच्छा तो आकर के मेरे पास बैठो, आप तो भगवान हो गए, इसका मतलब अभी। हाँ बोला मैं तो भगवान हो गया। तो उसको बहुत अहंकार आता है, वो बोलता है ये बात मेरे को बोला, आप जाकर के नारायण जी को नहीं बोलना। तो उसको वहां से भी उसके मन में नहीं रहता, जाकर के नारायण जी को वो बोलता है आपको पता है आप लोग तो गृहस्थी बन करके बैठे है लक्ष्मी के साथ, लेकिन मैंने तो काम विकार पर जीत पा लिया। तो उसको पता है कि भाई मैंने तो बल दिया था, वो सोचता है मेरा एक भगत है और उसको तो बहुत अभिमान आ गए तो बहुत खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो बोलता है अच्छा आप भगवान हो गए। हाँ बोलता है कि मैंने तो काम विकार पर जीत पा रहा, मैं तो भगवान हो गया। बहुत उसको मतलब ये आता है, अच्छा बोला तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है आपने तो काम विकार पर जीत पा लिया। तो उसका अहंकार निकालने के लिए वो क्या करता है, फिर ऐसे ही वो कहीं चला जाता है तो वहां वो माया रचता है। तो उस सिटी से जाते समय वहां एक राजा था, उसकी कन्या का स्वयंवर होने वाला था। जब स्वयंवर होने वाला था तो वहां का जो राजा तो देखता है नारद जा रहा है, बोलता है कि मेरे कन्या को आप थोड़ा आशीर्वचन देके जाना क्योंकि आप आए हैं। वो बोलता है नहीं मैं यहाँ से ही दे दूंगा। बोला नहीं वहां आकर के दे दो। जब वहां जाता है बोला बहुत सारे राजकुमार आने वाले देखने के लिए, तो आप भी चलो आशीर्वचन दो। तो जब जाता है उस कन्या को जब देखता है तो अचानक उसको दृष्टिवृत्ति चंचल हो जाते है। उसको लगता है कि ये तो कन्या तो मैंने स्वयंवर उसके साथ करना चाहिए, तो बहुत अच्छी है। तो तुरंत वहां से उठ करके गया और जाकर के नारायण जी को बोलता है कि देखो मैंने तो आपको कभी कुछ मांगा नहीं और आपके पास कभी आया नहीं, लेकिन आज एक चीज मैं मांगने के लिए आया हूँ। तो बोलता है कि क्या चाहिए। तो बोलता है कि मेरे को शादी करना है। अरे बोला आपने तो काम विकार पर जीत पाना है, देखो ये हंसी मजाक करने का समय नहीं आई और अभी आप ऐसे नहीं बोला। अरे बोला आप तो भगवान बने थे, इसको क्या हुआ। नहीं नहीं बोले अभी हंसी मजाक आप करो नहीं, आप ये बोलो नहीं। तो बोला अच्छा क्या सहायता चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि मेरे को अच्छा अच्छा ड्रेस दो ताकि वो मेरे ऊपर ही प्रभावित हो जाए और मेरे को अच्छा अच्छा चेहरा दे दो। उसने कहा ठीक है, चेहरा हो गया। उनको क्या किया, अच्छा ड्रेस दिया, चेहरा बंदर का दे दिया। उसने देखा नहीं चेहरा और सीधा भागे भागे गया और सभा में बैठ गया। सब देख करके उसको हंसने लगे। जब हंसते तो उसको तो और ये अहंकार आता है, वाह मेरा इतना अच्छा ड्रेस और इतना अच्छा नारायण ने दिया, इसके कारण मुझे सब हंस रहे। तो उसके बाद वो सब और ज्यादा हंसते। उसके बाद फिर जब वो कन्या आते है, उस कन्या ने इतनी अच्छी तपस्या की थी, उसको स्वयं भगवान के साथ नारायण के साथ उसको शादी करनी थी, उसका ये प्रतिज्ञा थी। जब उसने देखा तो उसको जब नारायण को देखते तो और उसको बंदर का चेहरा देख करके हंसते है, उसको और गुस्सा आता है। उस समय उसकी प्रतिज्ञा अनुसार नारायण जी आते है और आते है उनके गले में वरमाला डालते है, तो उसको और गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अरे ये क्या हुआ। फिर सब लोग उसको बोलते कि जाओ अपना चेहरा तो, जैसे बाबा कहते ना कभी अपना चेहरा तो जाकर के मुकड़ा तो देखो। और उसने जाकर के देखा, मुकड़ा था बंदर का दिया था। तो उसको और गुस्सा आता है, वो बोलता है एक तो आप उसने शादी कर दिए और उसके साथ मेरे को चेहरा भी खराब दिया। जाकर के सीधा उसको शाप देता है कि तुम जाकर के पाताल में जन्म लेंगे। और उस समय जाकर के वो सब अपनी कहानी सुनाता है। तो वो बोलता है कि चलो हमने तो अच्छा हो गया शाप दिया, क्योंकि आपने तपस्या की थी कि रावण को मारना है तो मैं जाकर के राम बनूंगा। तो उसी समय तो पूरा कहानी। तो फिर उसको बहुत नारायण को नारद को बुरा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती की और शाप दिया। तो ये किसका यादगार है, ये हम ब्राह्मणों का यादगार है। तो देखो उसको भी मदद करने वाला कौन था, नारायण जी मदद कर रहे थे, लेकिन उसको क्या हुआ, उसका अहंकार आ गया। इसी तरह आज हमें मदद करने वाला कौन? आज बाबा गुप्त रीति से हमें क्या कर रहा है? मदद कर रहा है कि आज आपके सामने ये माया आने वाले है। जैसे अभी माया किस रूप से आ रही वो बाबा पहले मुरलियों के द्वारा सुनाता है, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है उस बात का अहंकार आता है, अभिमान आता है, और इसीलिए बाबा कहते कि मुकड़ा देख ले प्राणी। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज का, कोई भी बातों का अहंकार ना आए। अगर कोई चीज का अहंकार आता है, कोई गुण का, कोई कला का, विशेषता का, वो गुण या वो कला क्या हो जाएगी? उसको छोड़ करके चली जाएगी और उसको सफलता भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें भगवान कहे जैसे निर्माण बनो, जैसे ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए जैसे ब्रह्मा बाप था वैसे हमें भी क्या बनना है? निर्माण बनना है। निर्माण ताकि बोल बोलने हैं, निर्माण ताकि चलन रखनी है। जो निर्माण होंगे वही कौन कितना अहंकार से कोई व्यक्ति बड़ा है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो जितना निर्माण होगा उतना ही वो बड़े की पहचान है। कितना किसके पास ज्ञान है वो ज्ञान किस आधार से पता चलता है? उसकी निर्माणता से। तो इसीलिए हमें ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए इस बात को, अहंकार का जो भी प्रकार का विष है वो विष को क्या करना है? निकलना। तो इस तरह से वर्तमान समय योगियों के पीछे ये अहंकार लगा पड़ा है। इसलिए बाबा ने कहा अहंकार के तो अनेक प्रकार है, देह का अहंकार, देह के भान का, कलाओं का, विशेषताओं का, कई प्रकार के अहंकार मनुष्य को आते हैं, क्योंकि अहंकार पतन का कारण है। जैसे रावण के अंदर बहुत सारे गुण थे, सब कुछ था, लेकिन अहंकार, अहंकार के कारण रावण का पराजय हो गया। अहंकार के कारण जिद्द, कई प्रकार के ऐसे विकार ऑटोमेटिकली आते हैं। तो इसीलिए हमें निरहंकारी बनना है। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना क्रोध आता है, क्रोध क्यों आता है? क्रोध लो रोग ये क्यों आता है? और लास्ट में बाबा ने निरहंकारी बोला है क्योंकि सब विकार के पर जीत पाने के बाद भी अगर अहंकार आएगा सब सद्गुण नष्ट हो सकते हैं। जैसे विष मिलाने के बाद जहर बन जाता है, विष मिलाने के बाद जैसा जो अमृत है वो भी क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। इसी तरह सद्गुणों का जहर बन जाता है। हमारे अंदर जितने भी सद्गुण आए अगर अहंकार आया उसका जहर बन जाता है। तो इसीलिए इस जहर को हमें क्या करना है? निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? वो सोमानु से। जितना सोमानु में रहेंगे उतना ये अहंकार का विष निकलता जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा मैं कौन और मेरा कौन। इसीलिए कोई भी कार्य करो, सेवा करो, किसने कराया? बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, बाबा कराता है, बाबा बाबा करते चलो तो ये विष ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। क्योंकि जैसे गुण होते हैं, क्योंकि अहंकार से क्या हो जाता है? क्रोध उत्पन्न होता है। जिसको अहंकार होगा वो क्रोधी आवश्यक होगा, और जिसके अंदर क्रोध आता है उस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। जैसे रावण के अंदर क्या हुआ? क्रोध से उसका विवेक नष्ट हुआ। उसने क्या किया? सीता का हरण किया। सीता का हरण करके वो क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है वो उसको पता भी नहीं चलेगा। जिसका विवेक नहीं है वो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कई प्रकार के पाप कर्म करता है। और अगर पाप कर्म करेंगे उसके सभी जितने भी सद्गुण है वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्या बनो? निरहंकारी। क्योंकि अहंकार से क्रोध आएगा, क्रोध से विवेक नष्ट होगा, और विवेक नष्ट होने से अनेक प्रकार के पाप कर्म होंगे, और उसके अंदर के जितने भी सद्गुण है वो समाप्त हो जाएंगे, ऊंचे मंजिल से वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जैसे अहंकारी होगा वो कैसा, जैसे खजूर होता है, खजूर के पेड़ की तरह ऊंचाई में जाएगा, लेकिन वहां से गिर गया तो सीधा उसकी हड्डी गुड्डी सब प्रकार की टूट जाएगी। तो इसीलिए और वो किसी को भी छाया, जैसे खजूर का पेड़ छाया देता है, जो अहंकारी व्यक्ति है वो किसी को छाया नहीं दे सकता। अर्थात अपने अंदर जो गुण है, विशेषता है, उसका दूसरों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि सब उसके पास आने के लिए डरेंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा के अंदर देखो शिव बाबा कितना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कितना उनके अंदर विशेषता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, सब कुछ है, लेकिन करण करावन हर है, सब कुछ सर्वसत्ता है उसके पास, लेकिन अहंकार है, बच्चों को क्या करता है रोज नमस्ते करता है। ब्रह्मा बाबा भी देखो उनके अंदर शिव बाबा आता है, कितना इतना सारा विचार सागर मंथन करके मुरली के अंदर कई पॉइंट्स बाबा के भी होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कभी मेरा फोटो रखो, मेरे को याद करो। वो प्रभावित किसके ऊपर करता है? शिव बाबा को याद करो, मेरे को याद नहीं करो, मेरा फोटो भी नहीं रखो, ये तो बूढ़ा चेहरे रही तो उसको तो नहीं, ये तू चले। लेकिन हम क्या करते, अपने तरफ प्रभावित करते, जहां अपने तरफ प्रभावित करते वो बहुत बड़ा पाप कर्म बन जाता है। अगर मुझे देख करके, मेरी कला देख करके, विशेषता देख करके लोग बाबा को भूल जाए, ये क्या है, पुण्य कर्म या पाप कर्म? ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। इसीलिए हमें बाबा के तरफ लोगों को आकर्षित कराना है, अपने तरफ आकर्षित नहीं कराना। तो इसीलिए निरहंकारी बन करके जाए, जैसे बाबा कहते ना करण करावन हार करा रहा है, या बाबा क्या कहते हैं ड्रामा अनुसार हो रहा है, जबकि कर रहा है बाबा। लेकिन बाबा शिव बाबा भी क्या करता है, ब्रह्मा बाबा बोलेगा कौन कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहा है, और शिव बाबा क्या बोलता है, ड्रामा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ड्रामा अनुसार हो रहा है, मैं तो ड्रामा अनुसार आया हूं, मैं नहीं आया हूं, और सब मैं ड्रामा अनुसार मुरली भी सुना रहा हूं, जबकि सुनाने वाला तो देखो कितनी निरहंकारिता है। तो इसीलिए हमें भी कोई भी सेवा करके कुछ भी करके क्या करना है, अपने तरफ प्रभावित नहीं करना है, लेकिन बाप की तरफ प्रभावित करना है। और जितना ये निरहंकारी होंगे, फिर जब शाम को बैठेंगे, क्योंकि जिसको अहंकार आता है ऐसी आत्मा को उसका चित्त स्थिर नहीं रहेगा, वो चंचल रहेगा। जिसको अहंकार कोई चीज का है, उसका जब योग करने के लिए बैठेंगे वो योगी नहीं बन सकेगा। जो अहंकारी आत्मा है वो योगी नहीं बन सकती, उसका योग टूटेगा, क्योंकि उसका चित्त स्थिर नहीं होगा। क्योंकि योग करने के लिए, स्थिर बुद्धि बनने के लिए कोई भी प्रकार का अहंकार न हो, निर्माण। तो इसलिए निर्माणता का कवच पहन करके सारा दिन हमें क्या करना है, चलना है। क्योंकि ज्ञान के पहले हमारे अंदर कोई कला नहीं होती, कोई विशेषता नहीं होती, लेकिन बाबा आते ही क्या करता है, अपना श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कई प्रकार की विशेषता और कलाओं का वरदान देता है। लेकिन उस वरदानों का क्या होता है, हमें अभिमान आ जाता है, और अभिमान वाला व्यक्ति जब उसको मैं करता हूं, मैंने किया, ये किया, तो फिर उसके वरदान वापिस ले लेंगे। इसीलिए जैसे रामायण महाभारत में भी लास्ट में क्या है, जैसे पांडवों की विजय हुई, और उस विजय में भी कौन विजय हुआ, जो धर्म पर चलने वाला निरहंकारी युधिष्ठिर, बाकी सब क्या हुआ, सबने विजय तो, लेकिन लास्ट में उनकी गति क्या दिखाई, सभी पांडवों की लाश में इतना तपस्या किया, इतना ये किया, सब कुछ किया, लेकिन लाश में समझो जो अर्जुन था, नकुल था, सहदेव था, इन सब में क्या था, एक एक गुण का या अपने कला का अभिमान था। उस अभिमान के कारण सब क्या हो गए, लाश में उनकी गति तो बहुत बुरी गति हो गई। जैसे सुनाते, जैसे दिखाते ना, जैसे अर्जुन था, उस अर्जुन के अंदर वो अक्षुणी सेना को मारने वाला, लेकिन लाश में उस बाण चलाने का अभिमान आया उसको, और उस अभिमान के कारण क्या, उसकी कुछ भील लोगों ने उसको लूटा। लाश में देखो कितनी बुरी गति हुई, क्योंकि अभिमान, समझो आप ज्ञान में चलेंगे, विजय पाएंगे, पांडवों की विजय होंगी, लेकिन लाश में अभिमान वाली व्यक्ति की लाश की गति बहुत बुरी होती, अंतिम उसका समय है वो बहुत बुरा है। इसीलिए अभी से हमें क्या करना है, इस अभिमान के संस्कार को, अहंकार के संस्कार को समाप्त करना है, ताकि वो अंतिम समय तक वो अच्छी तरह चल सके। तो जैसे पांडव का, जैसे दिखाते वो पहाड़ी पर जब जाते जाते जाते, जैसे सबसे पहले तो द्रौपदी गिर जाते हैं, क्योंकि उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। उस मेरु पर्वत पर विजय होने के बाद पांच पांडव, कुत्ता और द्रौपदी, ये सब चले जाते 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 अचानक द्रौपदी गिर जाते। द्रौपदी गिरने के बाद फिर आगे जाते हैं, जब द्रौपदी गिर जाते हैं तो पहले भीम जाकर के पीछे देखता है कि वो क्या हुआ, जब जाकर के देखते हैं तो एक जगह पर द्रौपदी गिरी पड़े, तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये इतनी अच्छी स्त्री थी, इन्होंने कितना हमारे लिए कष्ट सहन किया, कितना लोक लाज छोड़ी, जंगल में रही, उसके बाद दुख सहन किया, बहुत तपस्या की, ये की, ऐसे करते हुए उसकी बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनते रहता है और बोलता है कि इसने सब कुछ किया लेकिन घर बार छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात को नहीं छोड़ा। कौन सी बात? लगाव को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था और पांडव के साथ प्रीत, लेकिन ज्यादा लगाव उसके साथ ही था और उसके कारण वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं सके, वो गिर गई। उसके बाद आगे जाकर के नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, उसके बाद तो भीम ने पूछा, चलो वो तो गिर गई, चलो उसका लगाव था, लेकिन इन्होंने क्या किया? तो कहा कि उसके अंदर, नकुल के अंदर अपने सुंदरता का अभिमान था, उस सुंदरता का अभिमान। आगे जब गया सहदेव गिर गया, उसको अपनी बुद्धि का अभिमान। आगे गया अर्जुन गिर गया, उसको अपने बाण चलाने का अभिमान, उसके कारण वो भी चढ़ नहीं सका। और उसके जाकर के आगे भीम भी गिर गया, उसको अपने शक्ति का, बल का अभिमान। तो देखो, और लास्ट में विजय पाया कुत्ता और युधिष्ठिर, वही विजय पाए। तो देखो, अहंकार वाले व्यक्ति की हालत क्या होती, इतने सारे बाण चलाए, सब कुछ किया। तो ये हम ब्राह्मणों का यादगार है, बाण चलाना अर्थात ज्ञान बाण युद्ध में, या माया को खत्म किया, लेकिन अगर उसका अभिमान होगा तो भी लास्ट में विजय नहीं कहेंगे। उस आत्मा को भी चलाने वाला कौन है? उस अर्जुन को सहायता करने वाला कौन था? उसको वो भूल गया, वो ये भूल गया कि कृष्ण की शक्ति मेरे साथ थी, उसके कारण ये हो रहा है, लेकिन कृष्ण को भूल गया, उसको स्वयं का अभिमान आया और उसके कारण उसको जैसे दिखाते, जब उसको अभिमान आता है तो एकदम जैसे उसको दिखाते अंतिम समय, उसको कोई जैसे घोड़ा आता है नीचे, घोड़ा फिर उसको ऊपर उठा करके लेके जाता है और ऊपर से छोड़ देता है और कहीं भीलों के वहां गिर जाता, बहुत उसकी अंतिम समय बुरी हालत दिखाते। ये अहंकार की निशानी, अहंकार के व्यक्ति की अंतिम, भले उसने बहुत ज्ञान सुनाया, ये सुनाया, लेकिन उसके ज्ञान का अगर अभिमान होगा तो कई क्लासेस कराया, लोगों को ज्ञान सुनाया, ये किया, लेकिन अगर उसका अभिमान आया, मैंने कितना अच्छे क्लासेस किए, कितने अच्छा लोगों को ज्ञान सुनाया, इतने सारा जिज्ञास हो गए, मेरे कारण ये हो गए, लास्ट में भले जिज्ञास हो गए सब कुछ, लेकिन उस व्यक्ति की अंतिम हालत अलग हो गई। इसीलिए हमें इस अहंकार के विष को क्या करना है, सोमानों में रह करके उसको नष्ट करना है। इसीलिए बाबा ने करा, जैसे कठपुतली होते ना, उस कठपुतली को चलाने वाला कौन, जैसे वो चलाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो अदृश्य रूप में रहता है और कठपुतली डांस करते है। अगर वो कोई कहे कठपुतली कितनी अच्छी डांस कर रहे है, वो कठपुतली कर रहे, लेकिन कठपुतली को चलाने वाला उसको क्या कर रहा है, चला रहा है। अगर वो खींचे ही नहीं डोर तो क्या हो जाएगा, वो लटक जाएगी वही। तो इसी तरह हमें भी ऊपर से चलाने वाला वो अदृश्य रूप में, सेवा कराने वाला ऊपर से, वो आपको सेवा कराना है तो वहां से खींच करके, बुद्धि की डोर खींच करके क्या कर रहा है, वो उधर लेके जा रहा है, सेवा करा रहा है। सोमानों में रह करके ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, सोमानों में रह करके जितना सोमान, क्योंकि सोमान ये मान की परछाई है, जैसे सोमान में जितने रहेंगे तो मान ऑटोमेटिकली आपको परछाई की तरफ पीछे आएगा। अगर हम सोमानों में बिना रहते अगर मान के पीछे दौड़ेंगे तो फिर अंतिम, जैसे मृग तृष्णा होती ना, मृग जैसे दौड़ता है, वो दौड़ते दौड़ते जैसे उसको खत्म भी हो जाता है तो पानी उसको नहीं मिलता। इसी तरह जो मान के पीछे दौड़ता है, सोमान में बिना रहते मान के पीछे दौड़ता है, वो खत्म भी होगा तो भी उसको मान की जो तृष्णा है वो तृष्णा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि अहंकार जो होगा, क्योंकि अहंकार होगा या जिसको मान पाने की इच्छा होगी, ऐसा व्यक्ति अतृप्त रहता है। उसको स्वप्न में भी जो अहंकारी व्यक्ति होगा उसको सुख शांति कभी भी नहीं मिलेगी और स्थायी योग उसका नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें सोमानों में रहना है। इसलिए बाबा का वर्तमान समय जो इशारा है, बच्चे सोमान में रहो, और जो सोमान में रहेगा उसको कितनी भी बातें आएगी, कुछ भी होगा, उसको कोई भी प्रकार की उन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोमानवित रहने वाला उसको लगेगा मैं सत्य हूँ। उसको कोई भी प्रकार की पहाड़ी जैसी बातों को भी वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो सोमान में है। और जो सोमान में नहीं रहेगा उसको ये सब बातें जैसी पहाड़ की तरह नजर आएगी, अभी क्या करे, कैसे करे, कैसे इसको क्रॉस करे। लेकिन जो सोमान में रहता है वो ऊंचाई पर रहता है, उसके लिए वो बातें नीचे रहेगी और वो सदा के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा। उसको कोई भी प्रकार का चिंतन उसके लिए नहीं चलेगा, उसके दिल को कभी भी दुख भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें सोमानों में रहना है। तो फिर सोमानों में हम कैसे रहे, कैसे इस अहंकार के विष को हम कैसे मिटाए, कैसे समाप्त करें, उसके लिए सोमानों के अभ्यास हम कैसे करें। तो सोमानों के अभ्यास मतलब जैसे बाबा ने ना, योग आज कठिन लगने का यही कारण है क्योंकि हम सोमानों में नहीं रहे, नहीं रह पा रहे, और उसके कारण ये छोटी छोटी बातें, व्यर्थ बातें बहुत सारे जीवन में आ रहे, और उसके कारण जैसे लग रहा है कि ब्राह्मण जीवन क्या है, एक प्रकार का युद्ध लग रहा है। सारा दिन इस व्यर्थ बातों का चिंतन चल रहा है और उसके कारण योग कठिन लग रहा है। तो इस कठिन योग को सहज बनाने के लिए सोमानों का अभ्यास। तो सोमानों का हम अभ्यास कैसे करें, उसके लिए सोमानों का अभ्यास करने के लिए हमें रोज क्या करना है, कुछ ना कुछ प्रकार के विजन क्रिएट करना है। और उस विजन का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सोमानों के द्वारा योग बहुत इजीली रहेगा और सहज बाबा की आप अनुभूति कर सकते। जैसे कुछ दिन पहले जैसे बाबा ने कहा ना, तुम्हें जैसे रूहानी प्यार की आग लगनी चाहिए, रूहानी प्यार की आग लगे, जैसे साकार वाणी थी, बहुत अच्छी बाबा ने कहा कि रूहानी प्यार की आग, तुम्हारा माशुक कौन है, माशुक तुम्हारा शिव बाबा है, तुम आशुक हो और तुम्हें रूहानी प्यार की आग लगी है। जैसे बाबा ने कहा जैसे दुनिया में वो आशुक माशुक होते हैं, उनको लगता है कि आज मिलने के लिए जाना है, माशुक का फोन आया था तो जाना है, तो सारा दिन कर्म करते है, कुछ ये करते हुए भी क्या हो जाता है, उस माशुक का ही चेहरा सामने आता है, माशुक के साथ जाएंगे, क्या बातें करेंगे, कैसे करेंगे। तो ऐसा ही हमें भी क्या करना है, रोज सवेरे फोन करो माशुक को कि आज मैं आशिक आपका मैं मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन आज कहाँ मिलेंगे। जैसे वो आशिक क्या करते है, माशुक को बोलते है कि कहाँ मिलेंगे, कौन से बगीचे में जाएंगे। तो इसी तरह पहले स्थान फिक्स होता है, इसी तरह हमें भी फोन करके बताना है कि आज कहाँ आऊंगा। तो जैसे बोलो कि आज चलो परमधाम में तो रोज आते हैं, आज चलो चंद्रमा के ऊपर चलेंगे क्योंकि वहां शीतलता की छाया है, वहां कोई देखने वाले भी नहीं, तो इसलिए वहां जाकर के हम आपसे मिलेंगे। तो इसी तरह उसको अपॉइंटमेंट दिया और सारा दिन जैसे आपको जब कर्म करते है चलते फिरते, आज शाम को जाना है मुझे 6:30 बजे, माशुक मेरा कहाँ आने वाला है, चंद्रमा के ऊपर आने वाला है। आज मुझे क्या करना है, सारा दिन क्या करना है, फरिश्ता ड्रेस पहन करके रहना है। और शाम को हम कौन सा ड्रेस पहन करके जाएंगे, फरिश्ता का चमकीला ड्रेस पहन करके जाएंगे ताकि मेरा माशुक क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर आशिक हो जाएगा, अर्थात मेरे ऊपर कुर्बान हो जाएगा, मेरा ड्रेस देख करके, मेरा ये देख करके, चमक देख करके। उसके साथ मुझे सारा दिन क्या करना है, किसी के सुंदरता के ऊपर आकर्षित नहीं करना है, नहीं तो माशुक ऊपर से देख रहा है, वो देखेगा कि ये देखा किसी दूसरे के सुंदरता के ऊपर आकर्षित हो गया, तो इसीलिए शाम को मैं प्यार नहीं करूंगा उसके साथ। जैसे अगर कोई माशुक वो सामने देख रहे कि वो मेरे साथ भी प्यार कर रहे, साथ में दूसरे के साथ भी वो प्यार करेगा, फिर नहीं करेगा ना। तो इसी तरह वो देख रहा है ऊपर से, अगर मेरी दृष्टि किसी सुंदरता के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर गई तो वो कहेगा देखा मैं कितना सुंदर हूँ, और तुम मेरे को देखने के बाद भी तुम दूसरे के ऊपर सुंदरता के ऊपर आकर्षित करते। तो इसीलिए आज सारा दिन मुझे बस वो मेरा माशुक कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, बस सारा दिन क्या करना है, उसको ही करना है। और सारा दिन हमें क्या क्या बातें करेंगे, कैसे करेंगे, बस अभी 3 घंटा बाकी रह गया, 2 घंटा बाकी रह गया, अभी 4 बज गया, अभी बस जाना ही है। तो इस तरह से सारा दिन आपकी क्या हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जब योग करने के लिए बैठते हैं तो कर्म योग ऑटोमेटिकली आपका रहेगा, सारा दिन कर्म में ऑटोमेटिकली उस माशुक की याद रहेगी। उसके बाद जब शाम को योग करने के लिए बैठते हैं तो बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके अच्छी तरह फरिश्ता ड्रेस पहन करके क्या करो, निकल जाओ चांद सूरज तारांगन से, चंद्र जैसे चंद्रमा के ऊपर जाना है तो सीधा यहाँ से चंद्रमा के ऊपर जाओ। जैसा वो हम आने जाने से पहले वो आकर के चंद्रमा के ऊपर खड़ा होकर के आपका इंतजार कर रहे, और गुलाब का फूल जब आप जाते ही क्या करता है, आपको गुलाब का फूल देता है और स्वागत करता है और बहुत आपको रूहानी प्यार भरी दृष्टि देता है, और वो दृष्टि ने जैसे मुझे जन्म जन्मांतर की मेरी प्यास बुझा दी। फिर उसके बाद दृष्टि लेकर के फिर मैं इसके गोद में जैसे अपना सिर रख करके उसको पूछ रही कि सचमुच माशुक आज बहुत आनंद आया, आज आपने मुझे बुलाया तो मैं सारा दिन आपके यादों में खोई रही, तो आप ये बताओ कि आपने मेरे को कैसे पसंद किया, क्या मेरे अंदर विशेषता है। तो जैसे आपको आपका माशुक बोल रहा है कि आप जानते नहीं, आपने तो कई जन्म से मेरे को पाने के लिए तपस्या की थी, आपने जंगलों में रहे थे, आप ये किया था, तो आप जानते नहीं, आप बहुत सुंदर है, आपके अंदर बहुत विशेषता है। तो इस तरह से जब जैसे हम योग लगा रहे, लेकिन इस रीति से योग लगाओ तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, नहीं तो बिंदु बिंदु बन करके नहीं बैठो, बिंदु बिंदु कहेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आशुक और माशुक जैसे एक प्रकार के बहुत अच्छा आनंद आएगा योग में, इस तरह से बातें करते हुए। उसके बाद फिर अच्छा बाय, फिर कल कहाँ मिलेंगे, चलो कल परम धाम में मिलेंगे, कल एक दिन अव्यक्त वतन में मिलेंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, रोज आनंद से योग करना, ये है सोमान। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो उसके बाद जैसे वो जो आशिक है, जब उसने कुछ माशुक ने दी हुई जो प्यार भरे प्यार के बदले में कोई चीज देते ना, जैसे कोई शाल देता है, कोई कुछ देता है, कोई साड़ी देता है कुछ, तो इसी तरह उस माशुक ने मुझे ब्याज दे करके मुझे उस माशुक ने मुझे प्यार के बदले क्या दिया है, ये ब्याज देख ब्याज को देखते हुए, कोई गिफ्ट भी दी हुई चीज देखते हुए, तो इस तरह जो भी चीज देखते हुए भी कौन याद आएगा, वो माशुक याद आएगा। और जैसे समझो उस घर में अगर समझो कोई अगर उसकी शादी भी होती है तो भी उस घर वाले बहुत खराब है समझो, तो भी वो आशिक बोलते है कि ये घर वाले ऐसे क्यों मिले, वो बोलते कि चलो मेरा माशुक अच्छा है ना, मेरा पति अच्छा है ना, बाकी ये कैसे भी हो हमें क्या लेना देना। तो इसी तरह अगर समझो हमारा ब्राह्मण मतलब जहां हम रहते है उसमें समझो कोई कैसे भी संस्कार वाले हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, मेरा माशुक अच्छा है, बस मुझे माशुक को देख करके मैं इस घर में आई हूँ, मुझे और किसी से क्या लेना देना। इसी तरह आपको कोई कैसे भी हो संस्कार टकरवाने वाले हो तो भी आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से मेरे माशुक ने मुझे कितना। इस तरह से हमें क्या करना है, सारा दिन कोई चीजें देखते हुए कुछ करते हुए तो सहज हमें योग कर सकते, ये है सोमानों में रहने। इस तरह से आशुक माशुक का कभी ये सोचो कि जैसे मैं समझो दूसरा सोमान है कि जैसे मैं ज्ञान सूर्य हूँ या ज्ञान सितारा हूँ, तो मैं सितारा जैसे ये सितारे होते ना, इसी तरह परम धाम में भी एक सितारे की दुनिया है, और मैं सितारा उस परम धाम के रूहानी सितारों की दुनिया से निकल करके आता हूँ, और निकल करके आकर के क्या करता हूँ, एक मानवीय शरीर धारण करता हूँ, और मानवीय शरीर धारण करके उसमें भ्रुकुटी में बैठता हूँ, और भ्रुकुटी में बैठ करके मैं सारा दिन क्या करता हूँ, किरणें शीतलता की किरणें फैलाता हूँ, मैं आया हूँ ऊपर से आज के दिन के लिए किरणें फैलाने के लिए। फिर मुझे क्या करना है, सारा दिन किरणें फैला करके कभी मानवीय शरीर में बैठ करके किरणें फैलाता हूँ, कभी क्या करता हूँ मानवीय शरीर को छोड़ करके आकाश में स्थित होकर के वहां से किरणें फैलाता हूँ, और फिर शाम को मैं किरणें क्यों फैलाता हूँ, जैसे वो सितारा किरणें क्यों फैलाता है या चमकता है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, सूरज की किरणें पड़ते हैं, उसके कारण उसके अंदर चमक है। इसी तरह मेरे अंदर चमक कहाँ से आई, उस ज्ञान सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रहे और उसकी मैं रिफ्लेक्ट करके क्या कर रहे संसार में फैला रहे। इस तरह से बाबा भी याद आएगा और सारा दिन आपकी आत्मा अभिमानी स्थिति रहेगी, क्योंकि मैं मानवीय शरीर में भ्रुकुटी में बैठ करके किरणें फैलाता, और फिर मैं शाम को क्या करता हूँ, मैं सितारा शाम को वापिस जाकर के चार्ज होने के लिए जाकर के उस सितारम के दुनिया में जाकर के ज्ञान सूरज के बिल्कुल नजदीक जाकर के बैठता हूँ। तो इस तरह से सारा दिन आपको वो सोमान याद रहे। ऐसे कई प्रकार के विजन आप लेकर के अगर सोमानों के अभ्यास करेंगे तो सोमान आपके लिए जिससे आपको योग बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा। जैसे और भी जैसे एक सोमान है, जैसे बाबा कभी कहते कि बच्चे तुम विजय योद्धा हो, जैसे आज ही भी बाबा ने कहा ना तुम कौन हो, वॉरियर्स हो, युद्ध करने वाले वॉरियर्स हो, और कभी वॉरियर्स या योद्धे कभी भी मैदान में नहीं सोते, सोने के लिए कहाँ जाते, जैसे कृष्ण और अर्जुन उस सोते थे, वही सोते थे क्या, सोने के लिए उनका अलग स्थान था और फिर आकर के लड़ते थे मैदान में। इसी तरह हम भी वॉरियर्स है, हम वॉरियर्स रूहानी वॉरियर्स है, स्थूल वॉरियर्स नहीं, जिस्मानी नहीं। तो हम योद्धे कहाँ से आते हैं, परम धाम से, अव्यक्त वतन से आते हैं। ये सृष्टि हमारे लिए कुरुक्षेत्र, युद्ध करने का और हमारा युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है। तो हम योद्धे वहां से आते हैं, सारा दिन क्या होते हैं माया से लड़ करके, फिर क्या करते हैं वापिस जा करके, और वापिस जा करके सोते कहां? जब आप रात को तकिया पर सिर रखते उस समय समझो कि सारथी के गोद में सोते हैं। ब्रह्मा बाबा या बाप दादा सारथी है और सारथी के गोद में सोते हैं। जैसे कृष्ण जब युद्ध के मैदान में आने के लिए तैयार होता है उस समय अर्जुन क्या बोल, जैसे अर्जुन और कृष्ण आते हैं तो अर्जुन जब उठता है उठते ही क्या बोलते हैं, आज मैं युद्ध के मैदान में नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध कैसे करूंगा, ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे मारू, ऐसे बोलते ना। उसी समय क्या करता है कृष्ण, उसका हौसला बढ़ाता है अर्थात उसको सम्मान जागृत करता है। अरे तुम क्यों घबराते, मैं तुम्हारा सारथी हूँ और ये सब मरे पड़े, तुम केवल तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसी तरह मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र देता हूँ, तुम निमित्त बन जाओ। इसी तरह उसका हौसला जब बढ़ाता है तब उसको पावर आते है, बोलता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया था, तुम ये धर्म युद्ध लड़ो, ये तुम्हारा पाप नहीं है लेकिन ये धर्म युद्ध है। इसी तरह जब उसके सम्मान जागृत होते है तब क्या करता है, वो युद्ध के लिए तैयार होता है। इसी तरह सवेरे जब आप उठते हैं, जैसे रात को सोए है कहां, बाप दादा के गोदी में अव्यक्त वतन में सोए, तो बाबा को कि बाबा आज मुझे नीचे नहीं जाना है, आज मैं आपके पास ही बैठे रहूंगा, माया तो बहुत ही। तो जैसे बाबा आपके सवेरे सवेरे उठते ही आपको सम्मान जागृत कर रहे, जैसे आप नीचे युद्ध करने के लिए आ रहे और आपको सम्मान जागृत कर रहे कि आप क्यों घबराते, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, जिसका सर्वशक्तिवान सारथी है उसको घबराने की क्या जरूरत है, तुम उठो, तुम तैयार हो जाओ, तुम निमित्त बन करके जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम घबराओ नहीं, ये सब मरे पड़े और इन्हीं विकारों ने तुम्हारे साथ क्या किया है तुम जानते हो, तुम याद करो मैं तुम्हें क्या क्या दिया था और इन्हीं विकारों ने तुम्हें क्या, ये तो तुम्हारे दुश्मन है, इस दुश्मन को मारो और ये तो सारे संसार के लिए अच्छा है क्योंकि ये धर्म युद्ध है, तुम तैयार हो जाओ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उनके पर जीत पाने के लिए ड्रामा की ढाल देता हूँ, ये लोग ज्ञान की तलवार मना अमृत वाला, हम योग करने के लिए बैठे हैं इसी इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं, बैठे हैं जैसे अभी हमको क्या करना है, युद्ध के मैदान में सारा दिन जाना है और युद्ध के मैदान में जाने के लिए मुझे आज उस क्या करना है, माया जीत बनने के लिए आज मुझे अस्त्र शस्त्र लेके चलना है और मुझे आज मैं उस काम को, उस क्रोध को जिन्होंने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया, आज मैं उसको कोई भी स्वरूप से आएगा उसको नष्ट करूंगा, आज उसके वशीभूत नहीं होऊंगा। तो इसी तरह अमृत वाला योग करे, हमें क्या करना है उसी सम्मान में रह करके आज मैं अच्छी तरह युद्ध करूंगा अर्थात कोई भी संस्कार के वशीभूत नहीं होऊंगा, ऐसे स्वयं को क्या करना है अच्छी तरह, क्योंकि अमृत वाला जितनी पावरफुल है या जितनी आप पावरफुल करेंगे उतना आपका जो संकल्प लेंगे जैसे आप स्थिति बनेंगे उतना सारा दिन अच्छा रहेगा। इस तरह से नीचे जाने की तैयारी कर रहे और साथ में बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे, ज्ञान की तलवार दे रहे, पवित्रता का कवच दे रहे और साथ में आपको पावरफुल दृष्टि दे रहे, अपनी सर्व शक्तियां आपके अंदर भर रहे और साथ में आपको विजय भव करके वरदान दिया, विजय का तिलक लगा दिया, सफल भव का वरदान दिया और इस तरह से फिर आपको एक बहुत बड़ा हौसला आया, नहीं बाबा आज मैं माया से अच्छी तरह लड़ूंगा, आज तो खत्म करूंगा, आज कोई भी, इस तरह से आप एक पावरफुल योद्धा बन करके जैसे तैयार हुए उस समय बाबा ने। और कभी भी योद्धा मैदान में और सारथी घर में होता है क्या? तो इसी तरह बाबा परमधाम में और हम नीचे, ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्या करना है सारथी के साथ, जैसे ऐसा एक दिव्य रथ बना दिया और उस दिव्य रथ में आपको पीछे बिठा दिया और खुद बाबा सर्वशक्तिमान सारथी आगे बैठा और अभी हमारा रथ क्या हो रहा है इस युद्ध क्षेत्र के लिए नीचे आ रहा है और जैसे नीचे आया मतलब ये अमृत वाला योग हो गया और उसके बाद इसी सामान को आपको सारा दिन में यूज करना है, सारा दिन इसी सामान में रहना है। समझो जैसे युद्ध के मैदान में आए, जैसे कृष्ण पूछता है अर्जुन को अच्छा कहाँ चलना है, बोलता है कि मुझे इस तरफ लेके चलो, इसी तरह जैसे अमृत वाला पूरी हुई है उसके बाद कहाँ चलना है आपको, मुरली सुनने के लिए जाना होता है, तो इसी तरह बाबा कहो कि जैसे अभी मुझे सेंटर के तरफ लेके चलो, जैसे आपको जब जा रहे पैदल नहीं जा रहे लेकिन एक रथ में बैठे है युद्ध के मैदान में है, सारथी आपका साथ में और वो आपको सेंटर के तरफ लेके जा रहा है, तो इस तरह से उसकी गुणगान गाते हुए उसको देखते हुए सचमुच सारथी आपने तो कमाल कर दिया, आप मेरे लिए आए कितना अच्छा, आज मुझे कोई भी प्रकार का डर नहीं लग रहा है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सारथी मेरे साथ आए, सचमुच बाबा आप कितने सुंदर है, आपकी सुंदरता के सामने संसार की सारी सुंदरता पिकी है। इसी तरह उसको देखते हुए उसका वर्णन करते हुए बातें करते हुए आप कब सेंटर में पहुंचेंगे पता नहीं चलेगा और रास्ते में क्या क्या देख रहे, कोई सुंदर भी अगर कोई व्यक्ति भी आए उसको देखने के उसके तरफ मन नहीं होगा क्योंकि वो सुंदर सामने आप क्या है सत्यम शिवम। और उसके बाद सेंटर पर पहुंचे, रथ को खड़ा किया और उसके बाद पीछे चेयर पर बिठाए और खुद जाकर के आगे संदली पर बैठ करके आपको आज माया का क्या प्लान है वो आपको सुना रहे। मुरली मुरली ये है कि माया का जो युद्ध है आज उसका क्या प्लान है और आपको क्या करना है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई बहन मुरली सुना रहे, लेकिन नहीं, मेरा सारथी आज माया का क्या प्लान है और हमें क्या करना है, तो मुरली आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगी। नहीं तो अगर मुरली का एक भी माया का प्लान मिस हो गया तो माया का कौन सा तीर लगेगा और आपका कौन सा लगेगा, फिर उसमें अंदर फेल हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक एक सेंटेंस अच्छी तरह ध्यान से सुनना है। जो हे पार्थ, आज माया तुम्हें परचिंतन के रूप में आएगी, आज तुम्हें क्रोध लोभ के रोप के रूप में आएंगे, लेकिन आज तुम्हें शीतला देवी बनकर के रहना है, आज तुम्हें लगे और सगे बच्चे के रूप में आएंगे। जैसे आज तुम्हें, तो इस तरह से हमें एक एक सेंटेंस क्या कर रहे हैं, जैसे हमें सुनना है, उस समय आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद मुरली सुनी और उसके बाद पकड़ करके उंगली को रथ में बिठाए, फिर पूछ रहे कि कहाँ चलना है, बोलो कि अभी मुझे घर के तरफ लेके चलो। जब घर के तरफ जा रहे उस समय बातें करते चलो कि सचमुच सारथी आज माया, आपने माया का पूरा प्लान बताया, सचमुच आज आपने जैसा बताया वैसे ही मैं करूंगी, आज बिल्कुल शीतला देवी बनकर के रहूंगी। माया कितना भी रोप दिलाने की या क्रोध दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं उसके वशीभूत नहीं हूंगा। मैं आज सारा दिन इसी तरह आपको जो सुनी हुई बातें हैं उसको देखिए रिपीट करते हुए जा रहे, वो सामने है और इस तरह से घर में पहुंचेंगे। आप रास्ते में क्या देखा ये कुछ भी पता नहीं, जैसे ये है भी आपका योग है। तो इस तरह से सहज आपका योग होगा, कर्म में भी योग। उसके बाद घर में पहुंचे, उसके बाद उसको पूछे अच्छा नाश्ता क्या पसंद करेंगे, जैसे कोई मेहमान आता है ना उसको पूछते ना नाश्ता क्या करेंगे, तो इस तरह से अच्छा हम पोहा बना देंगे आप पसंद करेंगे। तो इस तरह से नाश्ता बना रहे लेकिन उसको पूछते हुए, वो अदृश्य रूप में आपके साथ में है, आपको देख रहा है। तो इस तरह से नाश्ता पूरा हो गया, उसके बाद फिर बाद में पूछ रहे अच्छा कहाँ चलना है अभी, तो बोलो कि मुझे थोड़ा क्या करो, थोड़ा अभी मार्केट में लेके चलो, थोड़ा सब्जी लाना है। तो इस तरह से सब्जी लाने के लिए अगर वहां कुछ होने वाला है, बॉम्ब गिरने वाला है, कोई आतंकवादी आने वाला है, कहेगा नहीं आप भी मर जाएंगे और मेरे को ये नहीं करेगा, इसीलिए उधर नहीं चलना। आपको अगर कुछ होने वाला होगा तो पहले ही टचिंग होगी। और इस तरह से जाते समय मार्केट में भी क्या करो, उसको बोलो कि सचमुच सारथी आज कितना बड़ा भाग्य, आप देखो परमधाम में रहते, यहाँ देखो इतना गर्मी में इतने लोगों के बीच में हमको रहना पड़ता है, आज आप आए देखो यहाँ कैसे। इस तरह से बातें करते हुए आप भीड़ भाड़ में भी बाबा आपके साथ में। अगर अचानक रास्ते में कोई पड़ोसी मिल गया, मेरी बहू तो ठीक नहीं, उसने मेरे को आज डांटा, फिर वो रथ उसने खड़ा किया, वो भी सुन रहे साथ में, आप पीछे बैठे और रथ में से आप सुन रहे, वो अगर कुछ विरत करेंगे कहेंगे अरे ये क्या तुम्हारे पर माया वार कर रहे, इसी तरह उसका आवाज क्या हो जाएगा, कानों में गूंजेगा। इस तरह से सारा दिन कोई बातें आएगी तो भी आपको अटेंशन रहेगा। और उसके बाद उसको ऑफिस में लेके जाओ, ऑफिस में लेके जाकर के उसको एक चेयर पर बिठाओ, आप अपना काम करो, बीच में बोलो कहीं बोर तो नहीं हुए, बस दो चार फाइल करके पूरा चलेंगे। तो इस तरह से आपको ये है सोमानों के अभ्यास। तो ऐसे अगर आप अभ्यास करेंगे, कहीं खेती में जाना है खेती में लेके जाओ कहीं, तो इस तरह से हम ऐसे सोमान को, इससे आपको योग इजीली लगेगा, ये है सहज योग। ऐसे हमें बाबा कहते मुझे यूज करो, तो इस तरह से आपको सोमान के विजन या दृश्य बना करके अभ्यास करेंगे तो योग आप सहज कर सकेंगे। और जितना सोमान में रहेंगे उतना आनंद आएगा, और उसके साथ आपका जो अहंकार का जो विष है उस विष को भी, फिर कोई आपको पूछे न पूछे आपको लगेगा अरे बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे पूछ रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, मुझे कोई पूछे न पूछे, मतलब ये आपको कोई भी संसार की कोई बातों की परवाह नहीं रहेगी। इस तरह से हमें ऐसा सहज योग करना है, निरंकारी बनना है और बाप समान हमें बनना है। ऐसे ये तो आपको एक दो एग्जाम्पल सैंपल के लिए बताया, ऐसे तो हमने करीबन 2-3 हजार विजन ऐसे क्रिएट किए। और उस विजनों के कभी कभी बीच बीच में क्या करते हैं अभ्यास करते, जिससे आपको बहुत इजीली योग की अनुभूति कर सकते। अच्छा ओम शांति।